समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कभी हंसती है तो कभी हंसाती है, ये सुबह ही है दोस्तों जो हमें जीना सिखाती है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक हंसती हंसाती नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारे जीवन में एक भरपूर दिन शामिल हो चुका है, एक और अवसर अपने सपनों को साकार करने का। और यही जज्बा मन में लिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आपके अपने कार्यक्रम के साथ आज सवेरे के साथ हम भी हाजिर हो चुके हैं स्टूडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनीता।
Good morning, dear. A very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 27th of June. And now, quote of the day. Sometimes when things are falling apart, they may actually be falling into place.
हाँ अनीता, जिस तरह से आपने बताया, हर दिन की तरह आज हम आपके लिए लेकर के आएंगे ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। इसके अतिरिक्त आप अपने सुनने वालों के लिए लोक रुचि समाचार भी प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये सब कुछ होगा आज सवेरे के संक में। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के साथ ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और उपलब्धि जुड़ गई। एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को दोपहर बाद करीब 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ा गया। मिशन के चालक दल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल हैं। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में 14 दिन तक शोध करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन टीम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग के लिए बधाई दी है।
पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई उसके कारण ये संभव हो पाया।
इंडिया हैज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इजराइल, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, आर्मेनिया and Turkmenistan for their support in the evacuation efforts carried out under ongoing Operation Sindhu. Addressing a weekly media briefing, Ministry of External Affairs MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, India has so far mounted 14 flights to bring back its nationals from the war zone in Iran. Due to the closure of Israeli airspace, Indian nationals were also taken to the bordering countries of Jordan and Egypt, from where they were flown back to India on special flights. India launched Operation Sindhu on June 18 to evacuate its nationals from Iran and Israel. He said India has around 10,000 members of Indian community in Iran and around 40,000 Indian nationals in Israel. He further added that from Iran, India have so far evacuated 3,426 nationals, 11 OCI card holders, 9 Nepalese nationals and some Sri Lankan nationals and one Iranian national who happened to be a spouse of an Indian national. He informed that from Israel, we have so far evacuated 818 Indian nationals in 4 flights. The MEA also confirmed that a total of 3,426 Indian nationals have been brought home from Iran as part of Operation Sindhu. The ministry reiterated that the safety and security of Indian nationals remains a top priority for the government led by Prime Minister Narendra Modi. The most awaited largest annual festival of Rath Yatra, also known as the Chariot Festival in Puri, is about to commence shortly. This is one of the most awaited Hindu festivals in the country and the world. The famous festival, usually celebrated in June-July, begins when Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, are ready to give darshan to the public. in the chariots and visit their birthplace, Gundicha Temple. The deities spent a 9-day stay at the Gundicha Temple. The 3 majestic chariots are ready and parked in front of the Singh Dwar of Jagannath Temple. Currently, the rituals of the lords are going on inside the temple. Since the deities will appear to the public, the day is extraordinary, attracting devotees to the pilgrim city.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ शीघ्र ही एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। कल एक आयोजन में उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब भारत के साथ एक बड़ा समझौता होगा। हालांकि उन्होंने चीन के साथ हुए समझौते का ब्यौरा नहीं दिया। श्री ट्रंप ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक देश के साथ व्यापार समझौता नहीं होगा।
The United States will host the Quad Foreign Ministers meeting on July 1st in Washington DC. Principal Deputy Spokesperson for U.S. Department of State Tommy Pigott, during a press briefing, announced this yesterday. Mr. Pigott said Secretary of State Marco Rubio will host foreign ministers from Australia, India and Japan for the 2025 Quad Foreign Ministers meeting next week. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, in a social media post, pointed out that he had a good conversation with Australian Foreign Minister Penelope Yingyan Vaughan before they head out for the Quad meeting. They also exchanged views on bilateral cooperation and Indo-Pacific. Earlier on 18th of this month, U.S. President Donald Trump accepted Prime Minister Narendra Modi's invitation to attend the Quad summit, which will take place in New Delhi later this year. The Quad is a diplomatic partnership between India, Australia, Japan and the U.S. committed to supporting an open, stable and prosperous Indo-Pacific that is inclusive and resilient. The Quad's origins date back to collaboration in response to December 2004 Indian Ocean tsunami.
महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप टूर्नामेंट के फाइनल में आज ओडिशा का सामना पंजाब से होगा। फाइनल मुकाबला चेन्नई में दिन के 2 बजे से शुरू होगा, जबकि कांस्य पदक के लिए इस समय तमिलनाडु और हरियाणा के बीच मैच खेला जा रहा है। उधर पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के फाइनल में हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु का मुकाबला हॉकी महाराष्ट्र से चेन्नई में आज शाम 4 बजे होगा। कल चेन्नई में पहले सेमीफाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में हॉकी पंजाब ने हरियाणा को मात दी।
इंडिया हैज वन द बिड टू होस्ट द प्रेस्टिजियस 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG। द अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर अ कंपेलिंग प्रेजेंटेशन बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स टू द WPFG फेडरेशन इन बर्मिंघम, USA. The event set to take place across Ahmedabad, Gandhinagar and Ekta Nagar in Gujarat. In a social media post, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel called it a proud moment for Gujarat, highlighting the state's growing status as a global sporting destination. He added that this global victory reflects the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. The World Police and Fire Games is one of the largest multi-sport events in the world, bringing together thousands of police officers, firefighters and first responders from over 70 countries. Hosting this event is not only a recognition of India's rising global profile in sports infrastructure and international diplomacy, but also a major boost to Gujarat's ambition to position itself as a premier venue for world-class sporting events.
और अब रुक करते हैं मेट्रो न्यूज का। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का हाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कांवड़ समितियों के साथ संवाद कर आगामी कांवड़ यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धा से परिपूर्ण बनाने पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूरी दिल्ली में कांवड़ यात्रा बड़े उत्साह से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों के स्वागत में पूरी तरह से लगी रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या न हो। इस दौरान कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने संकल्प लिया है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न हो और कांवड़ियों का सत्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ शिविरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय और ब्रिटेन स्थित लीड्स विश्वविद्यालय ने कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य दोनों विश्वविद्यालयों में विनियमित गतिशीलता और अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर सियरर वेस्ट ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस मौके पर दोनों विश्वविद्यालय के कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि इस साझेदारी से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच छात्र और फैकल्टी एक्सचेंज को बढ़ावा मिलेगा। और अब चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर। पीएल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आज शाम 5 बजे महिला कलाकारों की मॉनसून थीम पर आधारित कला प्रदर्शनी रंग मल्हार का उद्घाटन करेगी। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष सेलार अकादमी की गैलरी में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 10 जुलाई तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, जिसमें सभी आगंतुकों के प्रवेश निःशुल्क हैं। जर्मनी, लंदन और दुबई सहित भारत और विदेश की 20 से अधिक महिला कलाकार चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, कपड़ा कला, टेपेस्ट्री और सुलेख में काम प्रदर्शित करेंगी। मुख्य आकर्षणों में आलोक बनर्जी की माउंटेन मॉनसून टेपेस्ट्री और हीलर भगत की सुलेख शामिल हैं। प्रदर्शनी स्वरंग फाउंडेशन द्वारा सह प्रायोजित है। वहीं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार ने सभी स्कूली माध्यमों में मराठी को अनिवार्य विषय के रूप में फिर से लागू किया है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, लेकिन तीसरी भाषा चुनने की कोई बाध्यता नहीं होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और आगामी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा के अनुरूप राज्य की भाषा नीति छात्र हित और लचीलेपन को प्राथमिकता देगी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं बात करें देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की, तो आज रथ यात्रा है। पश्चिम बंगाल के लोग इस अवसर पर बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। बंगाल में इस अवसर पर कई रथ यात्रा उत्सव मनाए जाते हैं जो काफी प्रसिद्ध भी हैं, जैसे हुगली जिले का महेश रथ, महिषादल रथ, कोलकाता का इस्कॉन और नदिया जिले का मायापुर आदि। हुगली जिले का महेश रथ यात्रा उत्सव बंगाल में सबसे पुराना है। यह 500 साल से भी ज्यादा पुराना उत्सव है। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा के अवसर पर जलेबी, मिठाई और पापड़ विशेष व्यंजन है। राज्य भर में विभिन्न मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है।
And now news from Chennai. The Tamil Nadu Sports Department will set up futsal and box cricket turfs in all 38 districts. The facility will be established at the headquarters in 37 districts and in the city it will be located at Jawaharlal Nehru Stadium. The department has allocated 60 lakh rupees for each turf, which will include end-to-end covered nets with both futsal and cricket markings. It will also feature nets for futsal and lights. The turfs will be operational until late at night up to 1 a.m. and it will have adequate parking. Meghnath Reddy, Member Secretary of the Sports Development Authority of Tamil Nadu, said the department will directly maintain the turf. He said there will be an app to facilitate bookings similar to private facilities. The bookings will be priced between 800 and 1,000 rupees, which is less than the market cost of private players who charge 1,500 rupees an hour. A standard box cricket turf typically measures between 100 feet and 120 feet in length and 50 feet to 70 feet in width. Talking about Bengaluru, an indigenously developed radar simulator at SAME was handed over by the Indian Air Force to the Indian Coast Guard in Daman yesterday. The radar simulator is developed by the Software Development Institute based in Bengaluru. The institute is the premier software research and development unit of the Indian Air Force. The radar simulator will significantly strengthen the controller training infrastructure at Indian Coast Guard Training Center and enhance operational readiness in complex airspace and maritime scenarios. RADSIM is a high fidelity simulation system designed in India to replicate realistic radar and air traffic control environments. It will be used by the Coast Guard for advanced training of its radar and ATC controllers. This will enable immersive training through simulation of radar behavior and ATC operations under varied conditions. RADSIM is a testament to the technological excellence of the Indian Air Force and its commitment to develop indigenous technological solutions in line with the national vision of Atmanirbhar Bharat. The adoption of the indigenous technology of Software Development Institute by the Indian Coast Guard also highlights the strength of inter-service collaboration in building a self-reliant defense ecosystem. And talking about Hyderabad, the Telangana state government has launched the Elite Action Group for Drug Law Enforcement Eagle Task Force to curb the drug menace in the state. Chief Minister A. Revanth Reddy launched the specialized task force dedicated to combating the menace of drugs and illegal ganja cultivation, marijuana, on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking yesterday. The elite unit commenced operations across the state with the mission to identify, prevent and eliminate all forms of drug-related activities. With the motto of zero tolerance, total surveillance, Eagle has been equipped with highly trained personnel, advanced surveillance technologies and coordinated support from law enforcement and intelligence agencies. The Chief Minister announced that from urban neighborhoods to remote forest areas, Eagle teams will keep a relentless vigil to ensure that not even a single ganja plant is cultivated, nor a trace of drugs enters Telangana's borders. At a program held in Hyderabad, he declared that the Telangana Anti-Narcotic Bureau, TGNAB, will henceforth be called Eagle. He also emphasized the need to make Telangana a model state in eliminating menace of drugs. Stating that Telangana is a land of struggles and movements, Revanth Reddy said it will be insulting if it becomes the land of drugs. And now for a weather from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब बात करें दिल्ली के मौसम की, तो आज भी दिल्ली में उमस की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि गरज के साथ बारिश के भी आसार हैं। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, शहर में तेज वर्षा का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ बिजली गरजने और कहीं कहीं हल्की वर्षा का भी अनुमान है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन की अपनी विशेष पहचान दर्ज की। आज 27 जून 2025 है, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आज का दिन और किस महीने में खास है।
दिस डे दैट इज 27th ऑफ जून इज ऑब्जर्व्ड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे। द यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 27th ऑफ जून एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे टू रेज अवेयरनेस ऑफ द ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमएसएमईज टू द अचीवमेंट of United Nations Sustainable Development Goals. MSMEs account for 90% of businesses, 60 to 70% of employment and 50% of the GDP worldwide. And as the backbone of societies everywhere, they contribute to local and national economies and also sustaining livelihoods, in particular among the working poor, women, youth and groups in vulnerable situations. And yeah, MSMEs hold the potential to transform economies, foster job creation and promote equitable economic growth if given adequate support. MSMEs Day aims to highlight their pivotal role and explore opportunities for their further advancement. And now we remember those particular days when something special happened in history.
आज ही के दिन 1693 में लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मर्करी का प्रकाशन शुरू हुआ था।
In 1871 on this day, yen made official monetary unit of Japan, first minted in 1869. The yen was adopted as Japan's officially monetary unit this day in the year 1871 when the government suspended the exchange of clan notes, money issued by feudal lords that had circulated since the 16th century.
आज ही के दिन 1967 में लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया था।
And in the year 1976, a factory storekeeper in Nazara Township of Sudan became ill. In the year 1976, 5 days later, he died and the world's first recorded Ebola virus epidemic began making its way through the area. In 1977, Djibouti gained its independence from France.
वर्ष 2002 में आज ही के दिन G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे। 2004 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जीपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया था और 2015 में भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया था। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज सिख साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था और 40 वर्षों तक अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया था।
टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉन वूलर लेमन III। He was the American actor considered proficient in both dramatic and comic roles. He was known for his anxious middle-class everyman screen persona in comedy drama films. He received numerous accolades, including 2 Academy Awards, 7 Golden Globe Awards, and 2 Primetime Emmy Awards. He also received the AFI Lifetime Achievement Award in 1988, the Cecil B. DeMille Award in 1991, and the Kennedy Center Honors in 1996. The Guardian labeled him as the most successful tragic comedian of his age. Lemon received 2 Academy Awards for Best Supporting Role, also for Mr. Roberts, and for Best Actor, Save the Tiger. He was Oscar nominated for Some Like It Hot, The Apartment, Days of Wine and Roses, The China Syndrome, Tribute, and Missing. For his work on television, he received the Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie for Tuesdays with Maury. He was Emmy nominated for The Entertainer, which was released in 1975. Today is also the death anniversary of John Alec Entwistle, the English musician best known as a bass guitarist for the rock band The Who. Entwistle's music career spanned over 4 decades, nicknamed the Ox and Thunder Fingers. He was the band's only member with formal musical training and also provided backing and occasional lead vocals. Entwistle as well inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of The Who in 1990, renowned for his musical abilities. Entwistle is widely regarded as one of the greatest and most influential rock-based guitarists of all time. His instrumental approach featured pentatonic lead lines and then unusual treble-rich sound. And he was voted the greatest bass guitar player ever in 2011 Rolling Stone Readers poll. I am playing a snippet from the song by Who, Pictures of Lily. I used to wake up every morning, I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights, I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. Now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life. Today is also the death anniversary of Sam Homorsji Manekshaw, also known as Sam Bahadur or The Brave. The Indian Army General Officer who was the Chief of the Army Staff during the Bangladesh Liberation War in the year 1971 and the first Indian Army officer to be promoted to the rank of Field Marshal. His active military career spanned 4 decades, beginning with service in the Second World War. Manekshaw joined the first intake of the Indian Military Academy at Dehradun in the year 1932. He was commissioned into the 4th Battalion, 12th Frontier Force Regiment. In the Second World War, he was awarded the Military Cross for gallantry. Following the partition of India in 1947, he was reassigned to the 8th Gorkha Rifles. Manekshaw was seconded to the planning role during the 1947 Indo-Pak War and the Hyderabad Crisis. And as a result, he never commanded an infantry battalion. We have a dialogue from the movie Sam Bahadur.
एक सोल्जर के लिए जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है, सही? आज खाना नहीं खाया आप लोगों ने? Am I right? आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। जेंटलमैन, देयर विल बी नो मोर विथड्रॉल्स। सैम इज हियर।
और श्रोताओं बता दें कि सैम मैनेकशॉ अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले सबसे ज्यादा चर्चित और कुशल सैनिक कमांडर पद्म भूषण पद्म विभूषण सैम मैनेकशॉ और भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। आज बॉलीवुड के महान संगीतकारों में से एक आर डी बर्मन यानी पंचमदा की जयंती है, जिन्होंने अपने पिता की संगीत धारा को आगे बढ़ाया और महज 9 वर्ष की उम्र में अपना पहला गाना कंपोज कर लिया था। गाने का शीर्षक है ए मेरी टोपी पलट गया।
ए मेरी टोपी पलट गया ना अपने फंदों को सता, ए मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। ए मेरी टोपी पलट गया।
आर डी बर्मन ने फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जैसे कई पुरस्कार अपने नाम किए। आर डी बर्मन को सबसे पहले ब्रेक महमूद ने दिया, फिल्म थी छोटे नवाब। इसके बाद आर डी बर्मन ने एक के बाद एक बेहतरीन संगीत दिए और आज भी वो हमारे जुबा पर हैं, उन्हीं में से एक है ये।
ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
Considered to be one of the greatest and most successful music directors of Hindi film music industry from the 1960s to 1990s, R.D. Barman composed musical scores for no less than 331 films, bringing a new level of music ensemble with his compositions. R.D. did his major work with legendary singers Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle and Muhammad Rafi. He also worked extensively with lyricist Gulzar, with whom he has some of the most memorable numbers in his career. Another song composed by him.
चलते हैं चलते हैं।
And that was a snippet from a song from the movie 1942, A Love Story, which was the last movies for which he composed the songs, but unfortunately could not see the success of his work.
आज बॉलीवुड नायक नितिन मुकेश माथुर का भी जन्मदिन है। नितिन मुकेश का जन्म 27 जून 1950 को हुआ था। वह अपने समय के ख्याति प्राप्त सिने पार्श्व गायक मुकेश के पुत्र हैं। नितिन मुकेश ने अपनी गायकी के तहत कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए। फिल्म तेजाब के गीत से उन्हें हमेशा याद किया जाता है।
Today is also the birthday of P.T. Usha, the Indian sports administrator, parliamentarian and retired track and field athlete. Born in Kozhikode, Kerala, she grew up in Paihole. Usha has been associated with Indian athletics since 1979. She has won a total of 4 gold and 7 silver medals in the Asian Games. She is often associated as the queen of Indian track and field. And time now to wind up our program, Aaj Savere. This is Anita and Jaya saying bye to all our listeners. Stay tuned. For coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.